पृष्ठ संख्या 109। इसी प्रश्नवाचक के साथ राधा कर्णप्रिया में एक नए रूप में एक नए अर्थ प्रकाश से भरकर उठ खड़ी होती हैं, यानी कि कथा वही है, वही मिलन रास लीला, सघनतम संगोपन, अभिसार, आम्र मंजरियों से भरी मांग, वही वंशीरव में राधन राधन, राधन व्यक्ति कृष्ण का वही निजी आंतरिक सघनतम जीवन, जिसे भरपूर जीकर वह फिर सार्वजनिकता में खो जाते हैं, यानी कि वही परम्परित विरह मनस्ताप, लेकिन इस नए प्रश्नवाचक से एक सर्वथा नए अर्थ से पूर्णतया प्रकाशित। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों तक जिसको जाना था वह चला गया। हाय, मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु, सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंध्य अंतराल में? मानव इतिहास की इस नियमित निरंतर रचना में स्त्री का स्थान क्या है? इसी प्रश्न को लेकर राधा कर्णप्रिया में उपस्थित होती हैं। निश्चय ही जयदेव की अभिसारिका या विद्यापति और सूर की विरहिणी राधा इतिहास में स्त्री के स्थान की इस चिंता को नहीं उठा सकती और नहीं उठाती, क्योंकि यह चिंता आज की एक संवेदनशील जागरूक स्त्री की चिंता है। वह चिंता एक भोली भाली अबला की चिंता नहीं हो सकती। प्रिय प्रवास में फिर भी राधा कृष्ण की अनुगामिनी हैं। उनके सार्वजनिक कर्म जीवन की प्रेरणा से वह भी अपने व्यक्तिगत दुख भाव को दबाकर सार्वजनिक सेवा का व्रत लेती हैं। यह भी एक प्रकार से कृष्ण के जीवन के प्रति राधा के अनंत अनुराग और आत्मसमर्पण का ही प्रतीक है। इसमें नयापन यह है कि वह सूर्य विद्यापति की राधा की तरह असहाय, तिल तिल घुलने वाली अबला स्त्री भर नहीं है, लेकिन कर्णप्रिया की राधा कृष्ण के सार्वजनिक जीवन से परोक्ष प्रेरणा लेकर वैसा ही जीवन नहीं अपनाती। वह पुरुष के बराबर खड़ी होकर इतिहास में अपना स्थान मांगती है। वह अपनी वास्तविक नियति और यत्ता से परिचित होना चाहती है। पृष्ठ संख्या 110। पागलपन भरे अनंत मिलन संगोपन क्षण बीतने के बाद वह असहाय विरहिणी नहीं बन जाती, बल्कि मिलन के बाद की यह उत्तर स्थिति उसे एक मोहभंग की स्थिति लगती है। उसे अपना स्वत्व, अपने अधिकार, अपनी नियति और अपने वास्तविक अस्तित्व की चिंता घेर लेती है। विरह दुख से आगे बढ़कर अंततः वह विश्लेषण और छानबीन की ओर प्रवृत्त होती है। यह सेतु होना उसे सालता है, इसीलिए इस सेतु होने के बाद की अपनी स्थिति को जानने के लिए वह व्याकुल है। भारती ने इस व्याकुलता को अनुत्तरित नहीं छोड़ा है। यद्यपि कृष्ण नहीं है, वह सार्वजनिकता में खो गए हैं, फिलहाल लुप्त हो गए हैं, लेकिन राधा अपने इस प्रश्न का उत्तर पा जाती हैं। यह सार्वजनिक कर्म संकुलता तो व्यक्ति को धीरे धीरे रेशम के कीड़े की तरह चाट जाती है, वह उसे खा जाती है। यह तो एक प्रतारणा है इतिहास की संरचना, उसका नियमन। यह अनंत यश, यह महापुरुषत्व, यह शिखरों पर जाकर सूर्य की तरह की चकमक से ऊर्जस्वित होना, ये सब प्रवचनाएं हैं। वह व्यक्ति जो अपने एकांत निजी जीवन के सघनतम सुख क्षणों को छोड़कर सार्वजनिकता में उतर गया, अंततः सब कुछ सिद्ध कर लेने के बाद, सब कुछ पा लेने के बाद, वह यह भी पाता है कि वह निरंतर अकेला होता गया है। भीतर वह अपने निजी जीवन की ओर लौटने के लिए उसी तरह उत्कट बहुत द्वेग से भरता गया है। सारी पक्ष धारणाएँ, तटस्थताएँ, सारे नैतिक नियमन, सारे उद्घोषित निर्णय, इन सब के आलोक मंडल से घिरा वह पाता है कि वह चौंधिया गया है, वह थक गया है। यही व्यक्ति के लौटने की बेला है, यही कृष्ण का प्रत्यावर्तित अनंत विश्राम क्षण है। शायद उन्हें फिर आवश्यकता पड़े, वह जानती है कि अंततः उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही। यहीं आकर वह अपनी नियति और अपनी यत्ता की सही पहचान करती है कि वह सिर्फ सेतु नहीं है, वह नियति भी है। इतिहास में अपनी इस पहचान का लेकर वह इतिहास के मोड़ पर सार्वजनिकता से टूटे थके कृष्ण की अनंत प्रतीक्षा में खड़ी है। वह विरह नहीं अपनी इयत्ता की एक समयहीन सार्वजनीन पहचान है। इसीलिए यहाँ राधा अपनी इस अनंत प्रतीक्षा में ऊर्जस्वित और संतुष्ट हैं। तिल तिल घुलती हुई समाप्त नहीं हो रही हैं। अर्थ की यही नवीन संभावना कनुप्रिया को कृष्ण कथा के आख्यान में एक नया मोड़ देती है और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले न छूट जाओ। पृष्ठ संख्या 111। समुद्र के किनारे नारियल के कुंज हैं और तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो, मौन, परिशमित, विरक्त, और पहली बार जैसे तुम्हारी अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है। और इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए दर्द से पके हुए तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आई है। अब इस क्षण तुम केवल एक भरी हुई पकी हुई गहरी पुकार हो, सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई। तुमने मुझे पुकारा था ना? मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूँ कनु मेरे। शिवाजी का पत्र और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। शिवाजी का पत्र मुक् छंद में लिखी गई पत्र शैली की एक लंबी कविता है। इसके भीतर भी पाठ प्रवाह का वही सुघड़ रूप संयोजित है। सारी कविता में ऊर्जस्विता अत्यंत प्रखर है, बल्कि पूरी कविता एक तरह से एक ललकार है। इस ललकार में क्रोध या आवेश या उत्तेजना नहीं है। इसकी जगह अपने पौरुष और अपने विचारों और निर्णयों पर संपूर्ण आस्था के साथ यह ललकार अभिव्यक्त हुई है। छंद के अनुरूप ही उसके कथ्य के ओजस्वी आवेग में एक मंथरता है। गति की यह मंथरता शायद इसलिए निराला ने नियोजित की है जिससे पत्र पाने वाले पर एक एक शब्द की वज्रसिता का संपूर्ण गंभीर प्रभाव पड़े। वाग्मिता इस कविता का सबसे बड़ा गुण है, जिसे अंग्रेजी में इलोक्वेंस कहते हैं। पत्र लेखक शिवाजी जैसे भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की चिंता से ग्रस्त हैं, वह पृष्ठ संख्या 112 अपनी वीरता, अपने उद्देश्य और हिंदू जाति में समाविष्ट कमियों से एक साथ परिचित हैं। शिवाजी के लिए भारतीय संस्कृति का अर्थ हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, हिंदुत्व है। वे मुसलमानों को भारतीय संस्कृति का विनाशकर्ता मानते हैं और हिंदुत्व तथा संस्कृति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। उन्हें इस बात से घोर दुख है कि हिंदुओं का औसत चरित्र गिर गया है। निराला इसी को तुलसीदास कविता में जो रहे शेष नृपवेश सूत बंदीगण कहते हैं। प्रकांतर से यह वही जय सिंह है जिनको यह पत्र संबोधित है। निराला उनके अतीत की, उनके क्षत्रियत्व की, उनकी शूरवीरता की भी याद शिवाजी के मुख से दिलवाते हैं। अपना दुख भी प्रकट करते हैं और सूक्ष्म धारदार व्यंग्य करने से भी नहीं चूकते हैं। एक और है, विकर्षणमय सारा संसार हिंदुओं के लिए धोखा है, अपनी ही छाया से ठगते हुए अपने ही भाइयों को लूट कर उन्हें ही वह भरते हैं अपना घर। दो, व्यक्तिगत भेद ने छीन ली हमारी शक्ति, मिलो भाइयों से व्याधि भारत की छूट जाए। तीन, फैले संवेदना, एक और हिंदू एक और मुसलमान हो, व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाए देखो परिणाम, फिर स्थिर रहेंगे न पैर यवनों के, पस्त हौसला होगा, ध्वस्त होगा साम्राज्य। चार, चाहते हो क्या तुम सनातन धर्म धारा शुद्ध भारत में बह जाए चिरकाल के लिए? याद रहे बर्बाद जाता है हिंदू धर्म हिंदुस्तान, जारी रहा ऐसा यदि अत्याचार महाराज, निश्चय ही हिंदुओं की कीर्ति उठ जाएगी, चिन्ह भी न हिंदू सभ्यता का रह जाएगा। पृष्ठ संख्या 113। पांच, काफिर तो कहते न होंगे कभी तुम्हें वे, विजित भी न होगे तुम और गुलाम भी नहीं। कैसा परिणाम यह सेवा का, लोभ भी न होगा तुम्हें मेवा का महाराज, सीमा के राज राजेश्वर, भाइयों के शेर और कीतदास तुर्कों के। सांस्कृतिक क्षय की यही चिंता शिवाजी का पत्र का मुख्य स्वर है। शिवाजी जिस युग में पैदा हुए थे उस युग में संस्कृति का अर्थ उनके लिए हिंदू संस्कृति या हिंदुत्व ही हो सकता था। वह इस संश्लिष्ट सम्मिश्रित संस्कृति की बात ही नहीं सोच सकते थे जिसकी दुहाई आज बार बार दी जाती है। जिस तरह वह एक और हिंदू एक और मुसलमान हो की बात करते हैं, व्यक्ति के जातिगत खिंचाव की वकालत करते हैं, आज के धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में यह शब्दावली बड़ी अटपटी लगती है। इस तरह की शब्दावली से निराला के कुल व्यक्तित्व पर ही कभी-कभी शंका होने लगती है। मान लीजिए निराला जी के लिए यह शब्दावली सटीक और उपयुक्त भी हो तो क्या एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा और देश के बीच जहाँ हिंदू मुसलमानों का साथ साथ रहना ब्रैकेट में उन्हें पसंद भले ना हो और निराला की यह उक्ति सच्चाई के निकट भले हो उनकी नियति हो, वहाँ इस तरह की कथा वस्तु एक इतनी बड़ी प्रतिभा के कवि ने कैसे उठाई। अगर हम मुसलमानों या मुगलों को विदेशी मानकर, हालांकि हुमायूं के बाद ही मुगलों ने अपने को विदेशी मानने से इनकार कर दिया था, उन्हें अंग्रेजों और साम्राज्यवादियों के लिए एक प्रतीकार्थ में भी नियोजित कर लें, जिसके कुछ संकेत भी इस कविता में निहित हैं, तो भी हम यह कहने से नहीं बच सकते कि यहाँ मुसलमान का अर्थ मुसलमान नहीं है और औरंगजेब का शाहजहां का बेटा ना होकर सम्राट जॉर्ज पंचम है, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए एक ऐसा सेंसिटिव शब्द है कि वह मुसलमान के अलावा और किसी भी अर्थ में नियोजित हो ही नहीं सकता। यदि शिवाजी के संदर्भ से यह सारी शब्दावली उचित भी हो, तब भी मेरा कहना यही है कि आज के एक हिंदुस्तानी कवि को इस कथा वस्तु को इस धरातल से नहीं उठाना चाहिए। निराला के इस कथन में कि व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाए, एक और हिंदू एक और मुसलमान हो, और जुल्फिकार अली भुट्टो के इस कथन में कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, क्या अंतर है? इस नज़रिए से यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जलसों में सार्वजनिक पाठ के लिए उपयुक्त हो सकती है। लेकिन इन्हीं विचार सरणियों के पृष्ठ संख्या 114 आधार पर यदि हम निराला को भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति की चिंता का पक्षधर मान लें तो यह उचित नहीं होगा। जैसा जिन्ना ने गांधी की मृत्यु पर पाकिस्तान असेंबली में कहा था कि वह हिंदुओं के नेता थे, वैसे ही शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आगे चलकर इस कविता की बिना पर यह कहना पड़े कि वह हिंदुओं का कवि था। यह उपाधि जैसे गांधी जी के लिए वैसे ही निराला के लिए कितनी घातक और अनुचित साबित होगी। इसीलिए इस कविता की वजस्विता और वाग्मिता की तारीफ करते हुए भी वस्तु के स्तर पर इसकी वकालत शायद उचित नहीं होगी। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि शिवाजी के संदर्भ में यह भाषा, यह शब्दावली और यह इतिवृत्त सच भले ही हो, वर्तमान संदर्भों में इसकी उपयोगिता तो कतई नहीं है। हाँ, उल्टे एक खतरा अवश्य है। जिस सांस्कृतिक क्षय की चिंता निराला जी को शिवाजी का पत्र में सालती है, वही सांस्कृतिक अंधकार के रूप में तुलसीदास में भी व्यक्त हुई है। राम की शक्ति पूजा में भी दुर्गम पर्वत पर नशा अंधकार के रूप में वही चिंता उतरती है। कम से कम इसका झीना संकेत तो इसमें से निकाला ही जा सकता है, हालांकि उसका व्यक्तिगत कवि जीवन का अर्थ ज़्यादा स्पष्ट और सारवान है। शिवाजी का पत्र में जिसके घातक आक्रमण को निराला ने मोगल दल विगलित बल हो रहे हैं राजपूत बाबर के वंश की देखो राज लक्ष्मी प्रखर से प्रखरतर दिखती कहकर व्यक्त किया है, उसे ही वह तुलसीदास में मोगल दल बल की जलदयान दर्पित पद उन्मद नद पठान हैं बहा रहे दिग देश ज्ञान, सर खर तर छाया ऊपर घन अंधकार, टूटता वज्र यह दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धारा, ध्वनि हर हर कहकर अत्यंत संश्लिष्ट और भावप्रवण ऊर्जास्वित भाषा बंध में व्यक्त करते हैं राम की शक्ति पूजा के। राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, बिंध मोहोल्लास से बार बार आकाश बिकल। पृष्ठ संख्या 115 में भी आसुरी संस्कृति के उसी प्रकार की झनकार है। शिवाजी संस्कृति के वैसे ही रक्षक प्रतीक हैं, जैसे तुलसीदास में तुलसी है और राम की शक्ति पूजा में राम। लेकिन इन तीनों चरित्रों के भीतर से निराला स्वयं अपना कवित्व और कवि जीवन द्वारा संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठाते हुए लगते हैं। सांस्कृतिक अंधेरे के भीतर से जैसे शिवाजी प्राची के भाल पर स्वर्ण सूर्योदय देखने की परिकल्पना करते हैं, उसकी तरह तुलसीदास में तुलसी प्राची दिगंत उर्मे पुष्कल रवि रेखा देखते हैं। और राम की शक्ति पूजा में होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर उसी सांस्कृतिक सूर्योदय की परिकल्पना करते हैं। इन तीनों पात्रों का एकत्र समाहार निराला के कवि व्यक्तित्व में ही होता है। वही कभी शिवाजी बनकर अपनी अनंत आस्था का साक्षात्कार करते हैं, कभी तुलसीदास बनकर और कभी राम के पौरुष और उनकी गरिमामय सौम्य वाग्मिता में समाविष्ट होकर। इस प्रकार प्रकांतर से निराला के निजी आत्म साक्षात्कार का जो प्रक्षेप शिवाजी में हुआ है, उसी से उस इतिवृत्त को एक नया अर्थ प्रकाश मिला है। और इसीलिए निराला की यह लंबी कविता उनकी पीछे चर्चित दो कविताओं पंचवटी प्रसंग और यमुना के प्रति की तरह व्यर्थ नहीं गई है। अगर आत्म साक्षात्कार के इस नए अर्थ को शिवाजी के इतिवृत्त से निकाल दें तो यह कविता राजनैतिक दांवपेच भर बनकर रह जाती है, जिसमें एक वीर योद्धा कभी प्राचीनता की दुहाई देकर, कभी सांस्कृतिक क्षय की चिंता प्रकट करके, कभी उदास कभी उद्यत होकर, कभी शौर्य का संकेत देकर तो कभी व्यंग्य बाणों से बेध कर एक दूसरे योद्धा को उसके पक्ष से काट कर दल बदल करवाना चाहता है। इस कविता को इस नज़रिए से पढ़ते हुए मुझे नेपोलियन के वाग्मिता भरे पत्र याद आते रहे, जिनसे वह राजनीति के अनेक गहरे दांवपेच आसानी से सुलझा लेता था। अपनी रणनीति के साथ ही अपनी वाक शक्ति का अगाध विश्वास ही उसे राजनीति के उच्चतम शिखर पर पहुँचाने में सहायक हुआ। शिवाजी के पत्र में शब्द बंध की जिस वाग्मिता का इस्तेमाल निराला ने किया है, वह कुछ कुछ उसी कोट की है। और शिवाजी के अद्वितीय चरित्र निर्माण के लिए भाषिक संरचना की यही शैली सबसे अधिक उपयुक्त है। एक वीरवर समर में धर्मघातकों से ही खेलती है रण क्रीड़ा, मेरी तलवार निकल म्यान से। दो उठती जब नग्न तलवार है स्वतंत्रता की, कितने ही भावों से याद दिला घोर दुख दारुण प्रतंत्रता का, फूंकती स्वतंत्रता निज मंत्र से। पृष्ठ संख्या 116। जब व्याकुल कान कौन वह सुमेरु, रेणु रेणु जो ना हो जाए। इसी वाग्मिता के कारण पूरी कविता में एक दुर्निवार प्रवाह है, जैसे पत्र ना लिखकर शिवाजी सामने खड़े जयसिंह को ललकार रहे हों। और यह ललकार भी कैसी उद्यत उदास शौर्यपूर्ण ओजस्विता से भरी हुई। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज फिर निराला की एक कमजोर लंबी कविता है, यानी कि यह मात्र इतिवृत्तात्मक है, बल्कि अगर इसे गद्य के रूप में लिख दें तो यह सपाट नीरस गद्य लगेगा। न उसमें गद्य की विवरण क्षमता का एहसास होता है, न कविता की अनुभव संकुलता का। दरअसल यह एक प्रशस्त काव्य है और अनामिका की कविता सेवा प्रारंभ का ही एक प्रकार से विस्तार है। यह निराला के समन्वय काल की गुरुभक्ति से उऋण होने का प्रयत्न है, लेकिन इस कविता में भी सपाटता से जो इसे थोड़ी सी निजात मिली है वह निराला के निजी जीवन के प्रक्षेप के कारण ही कविता अपनी सपाटता से अलग जो थोड़ी सी भाव मुखर हुई है, वह निराला के इसी आत्म साक्षात्कार से संभव हो सका है। इसमें भी उन्होंने अपने को एक पश्चिमीय उपेक्षित प्रताड़ित युवक के रूप में रखा है, या कोई और भी हो सकता है, लेकिन निराला की रचना में आकर वह निराला ही हो गया है। और मुझे तो लगता है कि यह कविता जिस सपाट बयानी के ढंग से लिखी गई है और जिस तरह इसका टोन स्वामी प्रेमानंद के चरित्र और जीवन की कुछ घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है, उसमें पश्चिमी युवक और कोई नहीं बल्कि निराला स्वयं है। प्रेमानंद के चरित्र से जहाँ अपने आत्मचरित को वे एकान्वित करते हैं, वही कविता का सबसे मार्मिक स्थल है और वही शायद पूरी कविता का उद्देश्य भी है। भाषा तो इसकी बहुत ही लचर है, उसमें तत्सम और ठेठ शब्दों का ऐसा कुनबा जोड़ा गया है जो भाषा की किसी भी नई सर्जना के लिए सर्वथा अक्षम है। ठेठ शब्दावली का काव्यात्मक प्रयोग तो निराला ने स्वयं अड़िमा की ही कुछ कविताओं में तथा कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते में किया है, लेकिन वहाँ वह शब्द बंध सर्वथा एक नया इजाद है। यहाँ तो खेत एक पीट कर बराबर कर दिया गया, जैसे हास्यास्पद विवरण है जो कविता कहीं से भी नहीं लगते। अपने आत्म प्रक्षेप द्वारा ही निराला इसमें थोड़ा बहुत कवित्व तो ला सके हैं। निराला के जिस संन्यास की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनकी जीवनी में उठाई है, उसका संकेत इस कविता की अंतिम पंक्तियों में मिलता है। पश्चिमीय जन वह मंदिर के बाहर रहा, स्वामी जी ने चलते समय कहा कि पृष्ठ संख्या 117, मैं वही हूँ बाहर खड़ा है जो लौटे जब स्वामी जी साथ युवक हो गया, मंत्रमुग्ध प्रेम से वासना से मुंह फेर सदा को चला गया।